मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 11 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सभी के साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 22 अक्टूबर यानी कि कुछ दिनों बाद ही शुरू होने वाली क्लासेस के लिए दाखिला लिया है और इनका नाम है अनूप कुमार उमाशंकर जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। तो अनूप आपका मैं एकेडमी के अपने पूरे साथियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों खासकर उनके लिए जो अभी क्लास में आने वाले हैं और शेष आप सभी के लिए एक मेरी छोटी सी बात, और छोटी सी बात यह है फ्रेंड्स कि देखिए पढ़ना दो तरह का होता है, पढ़ना दो तरह का होता है। एक तो सामान्य पढ़ाई होती है जो हर कोई करता रहता है, कभी नॉवेल मन किया तो पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली और कुछ पढ़ लिया, ये पढ़ना है। लेकिन दूसरा जो पढ़ना होता है वो इस तरह का पढ़ना होता है कि वो हमारे अंदर उतर जाए और उतरने के बाद वो वहां मौजूद भी रहे। वो मनोरंजन के लिए पढ़ना नहीं है, वो टाइम पास के लिए पढ़ना नहीं है, या वो पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, बल्कि सच पूछिए पढ़ करके स्वयं को गढ़ने के लिए पढ़ना होता है। मित्रों इस तरह का जो पढ़ना होता है यह बेसिकली एक मनोविज्ञान की मांग करता है, ये एक बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम सबको ये बात समझनी होगी। और सीधी सी बात है कि अगर आप सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विस के लिए या किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने से ज्यादा सीखना है। आप उस पढ़ाई के जरिए अपनी गढ़ाई कर रहे हैं, खुद को गढ़ेंगे, ये पढ़ाई आपके जीवन को एक रूप प्रदान करेगी, उसकी बनावट को बदलेगी और कुछ बेहतर बनाएगी। तो मित्रों चूंकि इसका पूरा का पूरा संबंध हमारे दिमाग से है, हमारी स्मरण शक्ति से है, हमारी समीक्षात्मक क्षमता से है, तो स्वाभाविक है कि जब तक हम अपने मनोविज्ञान को इसके अनुकूल नहीं बनाएंगे तब तक वो पढ़ाई सही मायने में हमारे अंदर उतर नहीं सकेगी। ज्यादातर होता क्या है कि हम सब केवल रटने के लिए पढ़ते हैं, और जब हम रटने के लिए पढ़ते हैं तो उसकी जो उम्र है, उस रटे हुए की उम्र जो है वो बहुत छोटी होती है और बहुत ही अल्पायु होता है, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो हमारी जिंदगी में उसका कोई रोल नहीं रह जाता, कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गया। वो ठीक इसी तरह से है, हमारा साथ निभाते, जैसे कि ट्रेन में हम सफर करते रहते हैं, बहुत से यात्री बैठते हैं, बातचीत होती है और कुछ समय के बाद सब अपने अपना उतर करके घरों में चले जाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मित्रों खासकर क्लास में जो आने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें याद होगा कि कल मैंने उनसे कहा था कि वो खाली होकर आएं। आज मैं उसके साथ एक और भी बात ऐड कर रहा हूं और वो ये कि वो एक विश्वास लेकर आए, अपने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को वो संतुलित करके आए, क्योंकि बिना सही मनोविज्ञान के, बिना संतुलित मानसिक संरचना के, स्थिति के, आप कह लीजिए संरचना की बात मैं नहीं करूंगा, बिना संतुलित मानसिक स्थिति के सही मायने में पढ़ पाने का कोई अर्थ नहीं होता है, सही मायने में पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो मित्रों ये छोटी सी बात मुझे आप सबसे करनी थी। फ्रेंड्स आइए अब हम अपने न्यूज पर आते हैं। तो आज हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे सिविल सर्विस में सुधार को लेकर, सिविल सर्विसेज में सुधार को, राइट, इस पर हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे। मित्रों कल में जो कल की जो न्यूज है वो कोई भी खास न्यूज नहीं है, आप लोगों ने सुनी ही है, जिसको लेकर के हम विस्तार के साथ बातचीत कर सके। लेकिन एक खबर ऐसी है जिसको लेकर के मैं कुछ जानकारियां आप सबको जरूर देना चाहूंगा, और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं इसके पीछे एक पर्पज है, इस खासकर इस टॉपिक के प्रति ही जानकारी उपलब्ध कराना मेरा मूल पर्पज नहीं है, वो तो है ही, मैंने टॉपिक इस तरह का चुना है जो आपको एक पंथ दो काज कर सके, यानी कि टॉपिक भी ठीक ठाक हो जिसके परीक्षा में आपको मदद मिल सके, और दूसरा ये कि इसके जरिए मैं खासकर बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी संस्थान के बारे में आप पढ़ते हैं उनको उसको कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे कैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मित्रों मैंने उसके लिए आज चुना है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आपने रेडियो न्यूज में सुना होगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कार्य की तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है, और नो डाउट कि वो काबिले तारीफ तो है कि अपने 8-9 साल के कार्यकाल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्र की बहुत सफल और सम्मानित एजेंसियों में आ गई है, राइट? अब आप देखिए कि मैं अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा हूं, और इसे आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पर भी अप्लाई करना होगा। पहली बात तो यह होती है मित्रों कि आपको यह जानना होगा कि उस एजेंसी या उस ऑर्गेनाइजेशन का मूल करेक्टर क्या है, मूल चरित्र क्या है। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो बहुत चीजों के होते हैं, है ना, अपराधों के भी होते हैं, सिविल केसेस के भी होते हैं, घरेलू झगड़ों के भी होते हैं, फौजदारी मुकदमों के भी होते हैं, चोरी डकैती के, पता नहीं कितनों के होते हैं। तो हमारे आर्थिक अपराधों के होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये किस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली ये जो आतंकवादी जो घटनाएं घटती हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब आतंकवादी मामले जहां भी होंगे या उसको जरा सा भी शक होगा तो उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ये करेगी, राइट? अब आप देखिए मानवाधिकार आयोग तो ह्यूमन राइट्स के बारे में है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक पॉइंट होता है, राइट? अब आपको करेक्टर, बेसिक करेक्टर पता लग गया, तो अब उस बेसिक करेक्टर को कैसे फुलफिल करती है वो एजेंसी, उसके लिए उसके पास क्या अधिकार हैं, क्या हैंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो काम करती है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट? तो आइए अब मैं आपको एनआईए के बारे में कुछ बातें बताता हूं। पहली बात तो याद रखिए मित्रों कि ये सेंट्रल एजेंसी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, सेंट्रल एजेंसी है, राइट? उद्देश्य मैं बता चुका हूं कि आतंकवाद का मुकाबला करना, कि किस तरह से देश से आतंकवाद को समाप्त किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके, कम किया जा सके, जो भी आप कह लीजिए, टेररिज्म के अगेंस्ट ये अपने इन्वेस्टिगेशन करती है। और याद रखिए कि यह है इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी, लेकिन ये बेसिकली सिटीजन एजेंसी है। सिटीजन एजेंसी कहने का मतलब है कि ये पुलिस एजेंसी नहीं है, ये आर्मी एजेंसी नहीं है, नहीं पुलिस को तो चलिए हम सिटीजन में लेते हैं, सॉरी, आर्मी एजेंसी नहीं है, क्योंकि जब आतंकवाद की बात आती है ना तो ऐसा लगता है कि यार ये आर्मी का होगा, है ना, जैसे कि आतंकवाद के मामले में आप देखिए कि सबसे पहले तो आर्मी ही खड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिटीजन एजेंसी, ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। मित्रों 2008 में बॉम्बे के हमले के बाद इस एजेंसी के बारे में पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया कि ऐसे ऐसे एक एजेंसी होनी चाहिए, 2008 में वो एक्ट पारित किया गया, और उस एक्ट के तहत 2009 में इसने काम करना शुरू किया 2009 में, और अभी हम 2017 के लगभग आखिरी में हैं। तो आप देखिए कि 8-9 साल पुरानी ही यह एजेंसी है, और इस बीच में इसने काफी अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। मित्रों अब आप देखिए कि इस एजेंसी के अधिकार क्या है, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। तो होता यह है कि जो जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, तो मान लीजिए कि अब ये जरूरत महसूस हो रही कि इसके खिलाफ कोर्ट में मामला चले, कुछ फैक्ट्स आ गए हैं, उसके अगेंस्ट में केस दायर हो चुका है, FIR दायर हो चुकी है, तो अब क्या होता है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है, स्पेशल कोर्ट, राइट? और ये जो स्पेशल कोर्ट, स्पेशल NIA कोर्ट कहा जाता है, स्पेशल NIA कोर्ट। अब आप देखिए कि ये कोर्ट कैसे बनता है, उस कोर्ट के जो जज होंगे डेफिनेटली उनकी नियुक्ति तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह पर करेगी, याद रखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह पर करेगी। अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्यों है, क्योंकि ये जो कोर्ट होगा वो किसी स्टेट में काम करेगी, किसी राज्य में काम करेगी, जिस राज्य से संबंधित वह मामला होगा, राइट? तो उस स्टेट के ही वो हाई कोर्ट से जनरली पूछते हैं कि भाई हम किसे इसका NIA कोर्ट का हेड बनाए, राइट? अब वो काम करना शुरू करेगी, लगातार उस पर सुनवाई होती रहेगी और वो अपना जजमेंट देगी। और याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां यह है मित्रों, जो अलग से आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर वो कहीं भी किसी भी घटना की जांच शुरू करना चाह रही है तो इसके लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति नहीं चाहिए। अदरवाइज बहुत से मामलों में, ज्यादातर मामलों में, चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघात्मक स्वरूप है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति के बिना वो काम करना शुरू नहीं कर सकते। तो ये इनका अधिकार है, आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा अधिकार है, राइट। तो मित्रों, मैंने ये आपको कुछ बातें थोड़ी सी बताई है, परिचयात्मक बातें, कि इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी कर सकते हैं और इसी तरीके से करना भी चाहिए। मतलब ये जो बिंदु है ये छूटने नहीं चाहिए। प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात, वो लगभग इसी पैटर्न के अंतर्गत से पूछे जाते हैं, और फिर मेंस में जो पूछे जाते हैं, तो ये अगर आपका बेस तैयार हो जाता है तो मेंस का उत्तर देने के लायक भी यह जानकारी आपको बना देती है, राइट। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, सिविल सर्विस में सुधार पर। दरअसल मैं आपको आज एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो हिंदू अखबार में छपा है, और सिविल सर्विस में क्या सुधार होने चाहिए इसी को लेकर के वह आर्टिकल लिखा गया है। ये तो इसका तात्कालिक कारण है। दूसरा कारण यह भी है मित्रों कि अगर आप कंटेंट देखते होंगे, जो करंट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर मैंने इससे पहले 3-4 आर्टिकल्स प्रोवाइड कराए हुए हैं आपको सिविल सर्विस में सुधार को लेकर, राइट। और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इस शीर्षक से आपके सिलेबस के, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के सिलेबस में ये मेंशन भी है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए है, फिर आप तो सिविल सर्वेंट बनने ही जा रहे हैं। और खासकर आप अगर देख रहे हो तो पिछले 2 साल से, स्पेशली 2 साल से, सिविल सर्विस में सुधार किए जाने पर काफी चर्चा हो रही है। ठीक है, इस चर्चा ने अभी एक राष्ट्रीय बहस का रूप नहीं लिया है, लेकिन इस बीच में काफी आर्टिकल्स आए हैं, हिंदी में भी आए हैं, इंग्लिश में भी आए हैं, राइट। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे ये जो टॉपिक है ये जोर पकड़ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, सिविल सर्विस में सुधार किए जाने चाहिए। तो इस लिहाज से फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है, और खासकर मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। अब होता क्या है कि जब सिविल सर्विस में सुधार की बात आती है और अगर आपकी बहुत अच्छी तथ्यात्मक तैयारी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हम ऊपरी बातों को लिखते हैं, जैसे कि सिविल सर्विस के अधिकारी जो है ना, सेवा भाव से काम नहीं करते, ये लिख देंगे कि तो ऐसा सुधार किया जाना चाहिए कि वो सेवा भाव से काम करें। वो अपने को मालिक समझते हैं, वो जनता से दूर रहते हैं, जनता उनसे डरती है ना, वो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो हम ये सारी बातें लिखते हैं जो वेल नोन है, जो सभी लोग जानते हैं, और हमें लगता है कि हमने अच्छा उत्तर दे दिया, हम तो लिख करके आ गए। ये सारी बातें हैं, लेकिन इनसे होगा क्या? हमको तो ये बताना होगा ना कि भाई आप इनमें सुधार करेंगे कैसे। ठीक है, आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, उन्हें सेवक बनाना चाहते हैं, पूरी की पूरी सर्विस पर, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों की बहुत जबरदस्त पकड़ है, तो इस पर भी बहुत लिखा जाता है कि उनकी पकड़ ढीली की जानी चाहिए। फिर यह भी कहा जाता है कि साहब जो सामान्यज्ञ हैं उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, जबकि धीरे धीरे विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ती चली जा रही है, तो विशेषज्ञों को भी समान स्थान दिया जाना चाहिए, समान सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको भी अधिकार प्रदान करने चाहिए। तो ये जो सारे तथ्य हैं, इनको आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत करना होगा, सीधे सीधे नहीं, और फिर अपना एक फॉर्मेट बताना होगा कि किस तरीके का स्वरूप होना चाहिए। तब जाकर के सच पूछे तो मेंस के लायक हमारा उत्तर बन पाता है, अदरवाइज फिर वो सुपरफिशियल चीज बनकर रह जाती है और 10 में से 1-1.5-2 नंबर वो कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। मित्रों, ये जो आर्टिकल है, इसका मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी प्रोवाइड करूं, लेकिन थोड़ी सी स्थिति को आप देखिए, मैं उसकी बेसिक्स आपको बता देता हूं। देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां थे, तो उन्होंने सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर को तैयार किया। ऐसा नहीं कि हमारे यहां सिविल सर्वेंट इससे पहले होते नहीं थे, नौकरशाह नहीं होते थे, उनका नाम दूसरा होता था, राजा महाराजा महाराजाओं के अंतर्गत काम करते थे, और इनका सिस्टम कैसे हो, रिक्रूटमेंट कैसे हो, ट्रेनिंग कैसे हो, इस पर तो हमारे चाणक्य महोदय अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल में लिख चुके हैं। लेकिन इस तरह का सिस्टम नहीं था जिसे हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो अंग्रेजों ने इसकी नींव डाली, और अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, देखिए, बहुत स्पष्ट था कि भारतीयों पर शासन करना, राइट। तो सिविल सर्वेंट का पैटर्न उसी तरह से बनाया गया। सिविल सर्वेंट अपने को समझते भी उसी तरह से थे कि हम तो मालिक हैं क्योंकि हम तो शासन कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स के लिए ठीक था, वह उनके उद्देश्यों को पूरा कर रहा था, लेकिन आजादी के बाद तो अब ये जो सिविल सर्विस का जो पूरा का पूरा फ्रेम है, इसका उद्देश्य बदल जाना चाहिए ना, क्योंकि अब वो राज्य करने के लिए नहीं है, अब तो विकास करने के लिए है, अपने लोगों की सेवा करने के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह हुआ कि हमने नाम तो बदल दिया लेकिन उसका जो पैटर्न है वो ज्यों का त्यों रखा, मूलभूत पैटर्न को हमने नहीं बदला। देखिए, मूलभूत पैटर्न में किस चीज का बदलाव होना चाहिए था, एक दो चीजों का, मैं बहुत ही बेसिक चीज कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हो सका तो मैं इसका आपको हिंदी वर्जन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस समय भी हुआ करते थे, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों का दबदबा पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था पर बहुत ही जबरदस्त है, और इन्हें हम सामान्य कहते हैं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, दूसरे किसी के बारे में नहीं जानते। जो सवाल लोग उठाते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर एक होम सेक्रेटरी है तो बात ठीक है, क्योंकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसे डिफेंस सेक्रेटरी भी बना देते हैं जो कि रक्षा तंत्र के बारे में, मिलिट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है। आप उसे वाटर रिसोर्सेज में भी भेज देते हैं, जबकि वाटर रिसोर्सेज के लिए आपके पास अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के माध्यम से आते हैं। आप उन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बना देते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मतलब फाइनेंस में भेज देते हैं, जबकि उसके फाइनेंस की कोई बैकग्राउंड नहीं होती, और आपके पास फाइनेंस के लोग हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लोग हैं, इंडियन स्टेटिस्टिक्स सर्विस के लोग हैं, और यहां तक कि आईएएस सर्विस से ही आए हुए इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के लोग हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के लोग हैं, ये सब हैं। तो आप इनको भी उसके पैरेलल लेकर के क्यों नहीं चलते, और इंडियन पुलिस सर्विस है, उनको आप लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज के साथ क्यों नहीं लगाते। तो हर जगह आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को भेजते हैं जबकि वो उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। ये सबसे बेसिक बात कही जाती है। मित्रों, उसी के उसका क्या हल हो सकता है, उसी को आधार बना करके हिंदू में यह आर्टिकल पार्थ सारथी जी ने लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका हिंदी वर्जन आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। चूंकि अब वक्त नहीं है तो उस पर अब बात करना, मुझे लगता है कि जो समय का अनुशासन होता है उसका उल्लंघन करना होगा, जो आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे। तो मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, महिमा, नूपुर टाक, गंगाराम हैदराबाद से, दीपक कुमार, जितिन करौली राजस्थान से, राहुल सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और पवन राजपूत। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।